माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा धर्म का प्रूफ। तीसरा प्रूफ है जितने राज्य इस छोटे से देश में है और राज्यवाद के आधार पर जितना ये देश आपस में लड़ रहा है उतना दूसरे किसी देश में इतना झगड़ा नहीं है। जो एमपी के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी के लोग हैं वो यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, राज्यवाद के आधार पर बहुत अंदर अंदर आग भड़क रही है। ऐसे ही इतनी इस छोटे से देश में भाषाएं हैं और भाषाओं की संख्या है, इतना दुनिया की किसी भी देश में इतनी भाषा नहीं है। एक भारत देश ही है यहाँ सब तरह की भाषाएं पढ़ रही है, जितने राज्य उतनी भाषाएं, और भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा भी बहुत हो रही है। तमिलनाडु में चले जाइए और वहां हिंदी बोलना शुरू करिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हिंदी को वहां ठीक ही नहीं समझते, हिंदी भाषा कोई वहां पढ़ता ही नहीं, सब तमिल को प्रेफरेंस देते हैं। एक मलयालम ऐसा है दक्षिण भारत की भाषाओं में, वो देश दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ सब प्रकार की भाषाएं जो है पढ़ाई जाती है, तो वो एजुकेटेड लोग वहां जाते हैं, लेकिन फिर भी मलयालम भाषा को बहुत महत्व दे रहे हैं, हिंदी भाषा को वहां भी मलयालम माना केरल में भी उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में नहीं है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हिंदी भाषा में बोलता है या मलयालम में बोलता है या कन्नड़ में बोलता है या तमिल भाषा में बोलता है। जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो समझेंगे इस भारत की मुख्य भाषा अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बीसियों भाषाएं हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जनगण की भाषा है वो कौन सी भाषा है, भारतवर्ष कौन सी भाषा है, हिंदी। तो जो हिंदी भाषा है जन जन की भाषा है उसी में आकर के भगवान बोलेगा ना, हिंदी ऐसी भाषा है भगवान की भाषा, उसका प्रूफ है। भगवान आकर के जिस भाषा में बोलेगा वो भाषा सबसे सहज होगी, लिखने में भी सहज, पढ़ने में भी सहज, सुनने में भी बोलने में भी सहज और समझने में भी सहज, वही भगवान की भाषा होती है। जैसे भगवान आकर जो ज्ञान सुनाता है एक तो मनुष्यों का ज्ञान होता है, मनुष्य आज की दुनिया में जो ज्ञान दे रहे हैं वो डॉक्टरों का ज्ञान होता है, डॉक्टरी के पढ़ाई के कॉलेज होते हैं, मनुष्य आकर के जो ज्ञान दे रहा है अभी सृष्टि में मनुष्यों का ज्ञान में वकालत का ज्ञान होता है, जज बनते हैं, ऐसे ही आज की दुनिया में इंजीनियर्स बनते हैं, इंजीनियर्स जो है उनकी भी पढ़ाई है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉलेजेस हैं, वो भी मनुष्यों की पढ़ाई है, लेकिन भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है वो इतनी सिंपल पढ़ाई है कि उसका सार और उसका तंत्र जो है वो 7 दिन के अंदर समझा जा सकता है। कोई गरीब हो कोई रईस हो, समझदार कोई 8, 10, 15 वर्ष का बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, हर एक को भगवान का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठ सकता है, लूला लंगड़ा हो या शरीर से सो भगवान का ज्ञान सब ले सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में उसका सार समझ सकते हैं। اتنا سہج گیان ہے بھگوان کا اور اس کی فیس بھی کچھ نہیں. بھگوان آ کر کے جو گیان سناتا ہے آچار ویگنیش کی طرح ایسے شیور نہیں ہوتے ہیں جہاں پیسہ لیا جائے. اگر پیسہ لیا جا رہا ہے برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ میں تو سمجھ لو وہاں وہ دوسرے دوسرے دھرم کے جو کنورٹ ہوئی آتمائیں ہیں وہ وہاں گھس گئی, اس لیے وہ پیسے کی مانگ نہیں کر رہی. ابھی بھی جو ایشور کا سکت گیان ہے وہ جہاں کہیں بھی دیا جا رہا ہوگا وہاں پیسے کی مانگنے کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھگوان آ کر کے زیادہ خرچ نہیں کراتا, کم خرچ میں بڑے سے بڑے دھرم کی استھاپنا کرا دیتا. نکلا میں تب ہو پرمپورن ہمارا جھنڈا اونچا رہے ہمارا وجے وشو ترنگا پیارا. وہ تو کپڑا دکھا دیتے کپڑا سمجھتے, اب کپڑے کا جھنڈا وہ کیسے دوسرے سے کرے گا. یہ تو شریر کی تین وسط ہیں, یہ شریر کیا ہے وسط ہے, ان وسط شریر کی وسط کو آتما دھارن کرنے والی آتما ایک شریر چھوڑتی ہے اور دوسرا شریر لیتی ہے. جیسے کوئی ایک کپڑا بدلتا ہے اور دوسرا کپڑا پہن لیتا ہے, جیسے رنگ منچ ہوتا ہے تو ایک ہی ویکتی جو ہے چار چار پارٹ بجاتا ہے, ایک طرح کی کپڑا پہنتا ہے تو ایک پارٹ دھاری, دوسرے طرح کا کپڑا پہنتا ہے تو دوسرا پارٹ دھاری, تیسرے طرح کا کپڑا پہنتا ہے تو تیسرا پارٹ دھاری. ایسے ہی یہ آتما بھی پارٹ دھاری ہے جن جن منتر. تو یہ تین شریر روپی وسط ہیں برہما وشنو اور شنکر, تینوں وسطوں کا کاریہ ابھی پریکٹیکل میں چل رہا ہے اور کسی یوگ میں بھگوان نہیں آتا. ترمورتی سیوک تین مورتیوں کو لے کر کے صرف کلیوگ کے انت میں جب ایٹم بم بن جاتے ہیں اس پرانی سرشتی کا وناش ہونا ہوتا ہے تب ہی آتا ہے. آتا ہے تب بھی ایٹمک انرجی تیار ہوتی ہے اور جاتا ہے تو بھی ایٹمک انرجی وسفوٹ ہوتی ہے اور کام پورا ہوتا ہے. تو تین مورتیوں کے لیے سو سال کے سنگم یوگ میں پرشوتم سنگم یوگ میں 30-35 سال تینوں مورتیوں کے لیے بٹے ہوئے ہیں کاری کے لیے. برہما کے 30-35 سال تو جب انہوں نے شریر چھوڑا تھا اس کی 1869 میں 18 جنوری کو تبھی 35 سال پورے ہو گئے. شنکر کی تیسری مورتی کے 30-35 سال وہ بھی پورے ہو گئے, مانے 66-67 سال پورے ہو چکے. اب تیسری مورتی کو پرتکش ہونے کا تھوڑا انترال کا ٹائم رہا ہوا ہے, اس کو بھی 3-4 سال میں پرتکش ہوا.
دو مورتی پارٹ ہو گیا بول رہے نا, لیکن شنکر کا تو پریکٹیکل میں اپنا کے روپ میں ہوا وناش کے روپ میں.
برہما کماری یشو وشو ودیالیہ میں جو براہمن تیار ہوئے ہیں ان براہمنوں کو گیان بان مار مار کر کے اور ان کو منوبل کو ڈاؤن کرنے کا کام نہیں ہوا, انکشے بدھی بنانے کا کام نہیں ہوا.
بدھی سے گہرا
کوئی بھی کام پہلے سوکھم میں ہوتا ہے پھر اسکول میں ہوتا ہے, مکان بنایا جاتا ہے تو پہلے بدھی میں کھاتا آتا ہے پھر اسکول میں کاغذ میں کھاتا کھینچا جاتا ہے, وہ تھوڑا سوکھم روپ اور اسکول ہوا. پھر پریکٹیکل میں مکان پریکٹیکل میں بنا دیے جاتے ہیں تو تین آیام ہوئے کہ نہیں. تو ایسے ہی ہر مورتی کا جو کاریہ ہے وہ تین روپوں میں چلتا ہے. شنکر کا بھی کاریہ جو ہے وہ کاریہ سمپن ہو چکا, خاکا تیار ہو گیا, وہ خاکا جو ہے براہمنوں کی سنگ دنیا میں وسفوٹ کرنے والا ہے. کیا اس لیے مجھے بولا بڑے سے بڑا بمب ہے پرماتما بمب. برہما پرماتما کے روپ میں نہیں گایا ہوا ہے, وشنو بھی پرماتما کے روپ میں نہیں گایا ہوا ہے. پرماتما کے روپ میں ایک ہی ہستی ہے جسے شنکر کہا جاتا ہے, جس کا آدھ اور انت نہیں ہے. شاستروں میں ایک ہی دیوتا ہے جس کا جنم نہیں دکھایا جاتا اور جن کا مرتیو نہیں دکھایا جاتا. कृष्ण का जन्म भी दिखाया जाता है, मृत्यु भी दिखाई जाती है। ब्रह्मा के लिए भी बोला है शास्त्रों में, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में मृत्यु रूप में खलास हो जाता है, वो भी खलास हो जाता है। वो सबसे नीचे का कपड़ा है, विष्णु बीच का कपड़ा है, और सबसे ऊपर की तरफ के में शंकर की मूर्ति है।
तो तीसरा मूर्ति से और भी कुछ होगा, माना
प्रैक्टिकल कार्य,
प्रैक्टिकल
कार्य जो है वो विष्णु के द्वारा होता है,
लेकिन ज्ञान तो
वैष्णव संप्रदाय जो है वो अपने को बहुत स्वच्छ समझते हैं। कहते हैं कौन से संप्रदाय के, हम वैष्णव संप्रदाय के, हमारा खान पान रहन सहन सारा उच्च कोटि का है।
माना जो शंकर के थ्रू ज्ञान का बीज चारों तरफ सारी दुनिया में फैलाया जा रहा, हाँ। उसका प्रैक्टिकल करेगा,
प्रैक्टिकल तो,
लेकिन उसमें अलग ज्ञान नहीं रहेगा ना।
नहीं, ज्ञान तो वो ही रहेगा, अच्छा। लेकिन उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, मिच्योरिटी नहीं होगी मन मत की,
अच्छा।
या मनुष्य मत की मिच्योरिटी जो है जैसे ब्रह्मा के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में हुई, या जैसे शंकर के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में, तो रुद्रगण जो है वो 108 रुद्रगण जो रुद्रमाला में गाये हुए हैं वो 108 नंबर वार है, वो 12-12 के 9 ग्रुप से हैं, 9 धर्मों से आए हुए, वो एक से एक श्रेष्ठ हैं और एक से एक भ्रष्ट कर्म करने वाले, लेकिन है पावरफुल आत्मा दुनिया, वो 108 बीज है दुनिया के जिनमें सारी दुनिया समाई हुई है। इसलिए शास्त्रों में आया हुआ है कि जब सारी धरती गर्त में जा रही थी तो एक नाव बनाई गई और उसमें दुनिया के सभी बीज, खास खास बीज जो है वो उस नाव में रख लिए गए ताकि सृष्टि कहीं खलास न हो जाए, कम से कम बीज तो बने रहेंगे। तो ये 108 बीज रूप आत्माएं हैं जिनका गायन हर धर्म में किया जाता है, हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है। 108 मणकों, 108 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं अभी गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान दाता भी गुप्त, ज्ञान लेने वाले जो पांडव बच्चे हैं वो भी गुप्त, उनका धन पद मान मतवा दान दान धन जो भी कर रहे हैं वो सारा इस समय गुप्त रूप में, गुप्त में ज्यादा ताकत होती है, प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तुलसीदास ने, योग जुगुत जब मंत्र प्रवाह और फल है तब ही जब करिए दुराव, उसको जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा उसमें ताकत रहेगी। दान है, हम दान करें, आजकल लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और दूसरी तरफ पेट लगवा देते हैं, हमने इतना दान किया, तो वो नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता, वो दान वो अल्पकाल का सुख देगा दुनिया में, सदाकाल का सुख नहीं दे सकता। ईश्वर आकर के जो हमें दान करना सिखाता है वो ऐसा है दान करना सिखाता है जो सिर्फ ईश्वर को ही दिया जाए, ईश्वर ही लेने वाला हो और उसके जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो ही उसको दे दे।
इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्पण
कहते हैं, लेकिन करते किसको है, करते तो पापियों को है, भिखारी लोग आते हैं या साधु संन्यासी दरवाजे पर आते हैं तो दे दिया, अब वो बाहर जाकर के चाहे शराब पीते हो तो देखता है और पीते ही है। भीख मांगने वाले ज्यादातर आज की दुनिया में सारे ऐसे ही हैं। भगवान की सृष्टि पर बैदल के रूप में आता है जिसका नाम दिया हुआ है शंकर, बर्दे जोली बर्दे, मांगना सिखाता नहीं है, खुद मांगता भी नहीं है, लेकिन नियम ऐसा बताया हुआ है कि इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में जो जितना सहयोग करता है वो अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए कर रहा है, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, या भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो परमधाम में तो ले नहीं जाएगा, वो तो निराकारी लोग का रहने वाला है। वो इस सृष्टि पर जिन हस्तियों में आता है वो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है कि एक जन्म में रंक से राजा बनने की उनमें ताकत है। जैसे बाबर का मिसाल है, साधारण सिपाही था और साधारण सिपाही से क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया, विक्टोरिया का वजीर, स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, पढ़ाई पढ़ करके इतना ऊंचा बन गया कि वो वजीर बन के बैठ गया विक्टोरिया, विक्टोरिया को भी चला रहा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो। तो रामकृष्ण की आत्मा है तो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है, वो किसी का क्यों लेगी, उनमें तो खुद ही इतना स्वाभिमान भरा हुआ है, वो किसी से कुछ लेने वाली नहीं है बल्कि सबको देने वाली, वो बड़ी बड़ी बैंकर्स है। लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं इसलिए अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता, माना अकेले व्यक्ति की धन संपत्ति से स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं हो सकती, इसलिए सबका कणा दाना का सहयोग लेकर के और नई दुनिया की स्थापना करके चले जाते, ये बात समझते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं।
उससे नहीं कुछ कुछ
अच्छे लोगों को नुकसान हो जाता है,
तो जब गेहूं पीसा जाता है तो उसमें जो लाल रंग का कीड़ा होता है ना वो भी पीस लिया, सस्ती का अच्छा कोई नहीं है, ऐसा एक भी मनुष्य छाती के ऊपर के नहीं कह सकता कि हम मन से खराब संकल्प नहीं चलाते, खराब वाइब्रेशन नहीं छोड़ते, दृष्टि से हम किसी के प्रति लाल रंग नहीं करते, वाचा से हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कर्मेंद्रियों से हम कोई कर्म ऐसा नहीं करते जिससे किसी दूसरे के दुख लगे या हिंसा।
तो ये आतंकवादी वो हिसाब से नहीं चल रहे ना, ये अभी इंडोनेशिया में प्रॉब्लम है,
ऐसा है
वो किसके लिए किया, क्या होने वाला है,
ऐसा है आतंकवाद तब से आता है जब से इब्राहिम आए इस्लाम में, उससे पहले देवताओं की दुनिया थी, कोई प्रकार का आतंक नहीं था भारतवर्ष में, ये 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिल रही है जब से मनुष्य धर्मगुरु आए हैं इस धरती पर तब से ये आतंकवाद पहले फ्लाइट रूप में था, अभी बढ़ेगा लगातार बढ़ेगा, ये जो अमेरिका अपना महाशक्ति के रूप में संसार के सामने विकराल रूप में छोटे छोटे देशों को हड़प करती जाएगी,
तो एंड कैसा होता,
अब ईश्वरी शक्ति आई हुई है ना,
बहुत लंबा होता तो
बहुत लंबा कहा है, अभी तो आपने पूरी बात सुनी नहीं, आधी बात सुन करके चले गए, यहाँ बताया ना कि जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना करके जाते हैं, सबने आकर के अपने धर्म के 5 वर्ष को जो ज्ञान दिया है वो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना में 100 वर्ष से ज्यादा टाइम नहीं लगाया, ऐसे भगवान जी इस शक्ति पर आता है तो 100 वर्ष अभी भी नहीं, सन 36 से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का कार्य कर देता
है,
70 साल में पूरे हो गए, 2 मूर्तियों का कार्य पूरा हुआ, अभी 3री मूर्ति और ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगी, अब जो 3 मूर्तियों के कार्य को समझते जाएंगे वो ही पक्के ब्राह्मण यज्ञों पर विधारित कहे जाएंगे, 3 सूत्र होते हैं यज्ञों पर, वो 3 सूत्र जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ज्ञान का सूत्र है, तीनों के ज्ञान क्या क्या है, ब्रह्मा का ज्ञान क्या है क्या करता है, शंकर के रूप में जो ज्ञान इस सृष्टि पर आता है वो क्या करता है, क्या ज्ञान है उसका प्रतिफल क्या होता है, और विष्णु के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है वो क्या है, क्या प्रैक्टिकल परिवर्तन करता है, इन बातों को जानने वाला ही सच्चा ब्रह्म, तीन सूत्र धारण करने से सच्चा ब्रह्म,
मैंने अभी से 30 साल में
30 साल अठारह कार्य संपन्न, तीनों मूर्तियों का कार्य संपन्न होता है और सनातन धर्म की सही स्थापना, तो सनातन धर्म मित्र के रूप आ गया है 1000 वर्ष के बाद और उसका यही नहीं सकता,
तो अभी से अभी मित्र के रूप में है ना,
सभी धर्म विकृत रूप में है और सब धर्मों के प्रभाव में, क्योंकि सब धर्मों की संख्या तो 700 करोड़ है और सनातन धर्म वालों की संख्या 33 करोड़ है। धर्म की आत्मा है सनातन से सनातन, पुरानी से पुरानी, उनकी संख्या की दुनिया में बहुत कम है उनके मुकाबले। तो सारी दुनिया है काजल की कोठरी और थोड़ी सी आत्मा जो है वो काजल की कोठरी में अपना कार्य कर रही है। तो उनका धन करण तो लगेगा ही, थोड़ा नहीं काजल की कोठरी में कई लोग बयान है
करने वाला वो प्रलय का हिसाब से होता है।
प्रलय होती नहीं कभी दुनिया, शशि की कभी प्रलय होगी, आत्माओं का कभी विनाश नहीं होगा। आत्मा अजर अमर में अभिजाती है, शक्ति भी अजर अमर अभिजाती है, सिर्फ उसका रूप हो जाता है। तत्व प्रधान शक्ति बनती है और फिर तमो प्रधान शक्ति, अभी शक्ति का तमो प्रधान रूप हमारे सामने आता जाए। 30 साल के अंदर और भी जो गनीमत रह गई वो
अभी हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा है।
भगवान आया हुआ है, इसलिए तो भगवान आता है, आया हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छे होंगे। संसार का करताल होना चाहिए भारत में, अभी तो विदेशों का मोहताज है।
नहीं तो जिंदगी का इतना तंग होता है बोलने से, आदमी इतना परेशान है।
भगवान तो ब्रह्मा के तन में आकर के घोषणा कर रहे हैं, सब धर्म सब धंधो में है नुकसान, जितने भी धंधे अभी फैले हुए हैं वो सब नुकसान को पाए।
बहुत नुकसान है, किसी को भी शांति नहीं है हर एक लेवल पे।
जो जितना सच्चाई से कोई भी धंधा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वो सफल नहीं हो सकता।
ऐसा
आप इसी से देखिए, जैसे जो अच्छा काम करने वाला है उसके ऊपर लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो अच्छे काम करने वाले नहीं मस्ती मारने वाले वो मस्ती मार रहे
हैं। राइट
कारखानों में देखिए जाके, कारखानों में भी यही है, जो दंगा फसाद मचाने वाले हैं, तो जो पार्टीबाजी कर रहे हैं, जो यूनियन बना रहे हैं वो मस्ती मार रहे हैं, और जो वर्कर्स अच्छे अच्छे हैं उनके ऊपर रोज वर्कर चला जाए।
कितना जल्दी हो सकता है बहुत अच्छा।
उस अतीत में हम भी तो पीछे जाएंगे, अगर ईश्वर का आधार ले लेंगे तो वो हमारी सुरक्षा करेगा, उसके बच्चे बनेंगे तो सुरक्षा करेंगे, अगर उसके बच्चे नहीं बनेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। घर में आकर माँ बाप के घर में जो बच्चा पैदा होता है, भले गांव में आग लगे तो माँ बाप अपने बच्चों को बचाएंगे, भले गांव में आग लग जाए लेकिन बच्चों को फिर भी बचाएंगे, अपनी जान की बाजी लगा करके भी बच्चों को
बचाएंगे करके भी।
तो ऐसे यहाँ भी भगवान निराकार एक शक्ति पर आता है, रामकृष्ण वाली आत्माएं जो जन्म के चक्र में आती हैं उनका आधार लेता है अंतिम जन्म मनुष्य जन्म में आता है, और उनके द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर के ये ब्राह्मण तैयार हो गए, जो मुखवंशावली ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं उन मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों की वो ईश्वर जो है वो सहयोगी। मुखवंशावली बनते हैं तो रामकृष्ण की आत्माओं के सामने तो जरूर पहुंचेंगे, उसका प्रोसीजर है एक बनाया हुआ। वो प्रोसीजर ये है कि जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पकता है और फिर पैदा होकर बाहर आता है, तो 9 महीने की भट्टी पकी ना पेट में, 9 महीना दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया ना, उस भट्टी में पक करके फिर जो बच्चा पैदा होता है, लाल पैदा होता है, वो बाप का बच्चा कहा जाता है। ये तो स्थूल बात होगी दुनिया की। ऐसे ही परमात्मा के जो बेहद के बच्चे बनते हैं मुखवंशावली औलाद ज्ञान की, उनको जब निश्चय पैदा होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भगवान के घर में पहुंच करके 7 दिन की भट्टी करते हैं। एक दिन आना अपने स्थान से भट्टी में जाने का और एक दिन वापस आने का, और 7 दिन की वहां भट्टी, तो 9 दिन की भट्टी है जिसमें बाहर की दुनिया के कनेक्शन कट रहे हैं। और तो 9 दिन के अंदर पूरे ही निश्चय बुद्धि हो जाती है कि किस तरह ब्रह्मा हमारी माँ है सारी शक्ति की, ब्रह्मा माने बड़ी से बड़ी माँ, और जगत पिता शंकर, जगत पिता और जगत ब्रह्मा की जो कार्य चल रहा है शक्ति पर वो बाप का ऊपर बुजुर्ग की हाथ वरद हस्त हमारे ऊपर हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, तो इस हाथ की बात नहीं है, जैसे इस हाथ से कोई चीज कैद की जाती है ऐसे बुजुर्ग की हाथ से भी कोई बात कैद की जाती है, भगवान की वाणी भी बुजुर्ग की हाथ से कैद की जा सकती है, तो भगवान का बुजुर्ग की हाथ जिसके ऊपर आ जाएगा तो उसको छत्र खाया भी नहीं, उसको क्या बोलेगा, भले दुनिया का विनाश होगा लेकिन कौन आत्मा का विनाश, शरीर का भी नहीं होगा और आत्मा का विनाश हो पाएगा, नई सृष्टि आएगी तो उसमें सब थोड़े खलास हो जाएंगे, सृष्टि के बीच कुछ तो बचेंगे, जो तो कुछ बचेंगे उनकी संख्या लाखों की ज्यादा होगी, 9 लाख सितारे आसमान में जाएंगे, जो 9 लाख आसमान में हैं जब विनाश का टाइम होगा हर हर बम बम के बम फटेंगे शंकर जी के, तो उस समय 9 लाख सितारे संसार में ज्ञान की चमक मारेंगे, सारी दुनिया उनके सामने झुकेगी रिगार्ड करेगी ये ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, जो भी बातें हैं वो सब शास्त्रों से तय लिखी गई है, शास्त्र जो लिखे हैं वो मनुष्यों ने लिखे हैं भगवान ने नहीं लिखे, धर्म पिताओं ने नहीं लिखे, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल नहीं लिखी, कुरान मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, गुरु नानक ने नहीं लिखा, ऐसे भगवान की जो ज्ञान सुनाता है डायरेक्ट मुख से सुनाता है, वो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है कि गीता में श्रीमद भगवद गीता में भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान हो, नहीं वो मनुष्यों का है, जितने भी शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं उन शास्त्रों का सार आकर के भगवान आकर के बनाता है, कै समझे कवि कै समझे रवि है रावत है, कभी कविता करके चले गए, रामायण की कविता हो महाभारत की कविता हो भागवत की कविता हो ये कविताएं कर करके चले गए, लेकिन उनके अर्थ क्या है असलियत क्या है वो कविता करने वाले जानते थे थोड़ा बहुत, वो भी गए, अब इंटरप्रिटेशन करने वाले अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थ उनका शास्त्रों का स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य जब सृष्टि पर उतरता है तो उनका सही अर्थ बताता है कि रावण को 10 सिर कैसे होते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं कैसे होती हैं, कुंभकर्ण 6 महीने सोने वाला कैसे होता है, उन सब बातों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है सही से क्या, शंकर की जो मूर्ति है तो उस मूर्ति को ऐसा जोकर क्यों बनाया हुआ है, सर के ऊपर हाथों में सांप, बाहों में सांप, गले में सांप, कमर में सांप, तुम दारू में टक रही हाथ में त्रिशूल है, पिटा दिया वाहन पहन कर दिखाया हुआ है, उनके बच्चे को वाहन चूहे का दिखा दिया, उनके दूसरे बच्चे को वाहन मोर का दिखा दिया गया, तो ये सब प्रतीकात्मक अर्थ क्या है वो भगवान आकर के कल्याण हम पहली जनवरी 1967 की वाणी चल रही थी, पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, ये संगम युग है, अभी वो लोग तो नया वर्ष मनाते हैं और कह देते हैं युगादि, वास्तव में यहाँ तो नया वर्ष भी नहीं है और कोई नए युग की आदि भी नहीं है, यहाँ तो कल्प की आदि है, माने पूरी चतुर्युगी की ही आदि है, चारों युगों की आदि है। कल्प का अंत भी है, पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि। नई दुनिया में नया वर्ष होगा, नया युग होगा, मनसत युग होगा और नया कल्प होगा। तो देखो तुम्हारा नया वर्ष अभी चल रहा है, नया वर्ष चल रहा है या चलने वाला है, वो तो पुरानी दुनिया का नया वर्ष बनाते हैं और तुम्हारा नई दुनिया का नया वर्ष चल रहा है। उसके लिए अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, अभी तुम संगम युग पर हो और नई दुनिया का नया वर्ष अभी आने वाला है। नया दिन होगा, नया महीना होगा, नया वर्ष होगा। कहेंगे संबत एक एक एक, तो सतयुग जब शुरू होगा तब नया वर्ष चलेगा। अभी तो संगम युग है और ये बात भी किसी को पता नहीं है कि ये अभी संगम युग है। तुम ब्राह्मणों की सिवाय कोई को पता नहीं, वो तो समझते हैं अभी कलयुग है, कलयुग का भी आदि चरण है, अभी हजारों वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। तुम बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। संगम युग तो है लेकिन पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाले कौन कौन है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। इसी युग में हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं और उत्तम पुरुष कहा जाता है देवताओं को। देवताएं हैं श्रेष्ठ श्री, ऋषि की औलाद है श्री श्री है शिव बाबा। अभी इस पुरानी दुनिया में तो कोई भी पुरुष उत्तम नहीं होंगे, नंबर वन पुरुषोत्तम बनते हैं लक्ष्मी नारायण। पहले श्री कृष्ण को कहेंगे, फिर बात आती है निवृत्ति मार्ग में शंकराचार्य पुरुषोत्तम था जिसने पवित्रता का संन्यास धर्म स्थापन किया, परंतु वो शंकराचार्य तो फूट करके चार हो गए। अभी बाप भी आकर के पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं, परंतु शंकराचार्य ने तो स्थापन किया पुरानी दुनिया में, द्वापर के अंत में, और तुम्हारी स्थापना तो होती है नई दुनिया में। वो है हद के सन्यासी,
अभी वो सन्यासी भी टूट करके चार शंकराचार्य हो गए। इनकी भी कमेटी होती है जो आपस में मिलकर के किसी को शंकराचार्य बनाते हैं, और यहाँ कमेटी की तो बात नहीं है, यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। नई दुनिया में नए वर्ष में तुम राजी करेंगे, तुम अभी गुप्त हो। तुम्हारा पद मान मर्तबा सारा गुप्त है, तुम्हारा दान भी गुप्त है। गुप्त होने के कारण अभी पवित्रता पर कितना झगड़ा चलता है, कितना तंग करते हैं, खान पान पर भी बहुत झगड़ा चलता है। कहते हैं प्याज खाना पड़ेगा, लहसुन खाना पड़ेगा, घर में आधे ज्ञान में चलते हैं, आधे ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो कहते हैं मांस गोश्त सब खाना पड़ेगा। कौन कहे कि हम तो वैष्णव बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जबरदस्ती क्यों करते हो, हम तो विष्णुपुरी की स्थापना में सहयोगी है, विष्णुपुरी बनाने में तुम झगड़ा क्यों डालते हो। वास्तव में विष्णुपुरी सतयुग में होती है, अभी जो वैष्णव आदि हैं वो तो कलयुग की वैष्णव है। कलयुग में चारों तरफ सारी दुनिया में रावण राज्य है, रावण राज्य के वैष्णव और राम राज्य के वैष्णव में रात दिन का अंतर है। अभी सारी दुनिया के आदि मध्यंत का राज्य रसम रिवाज बाप बैठ समझाते हैं, ये तो तुम जानते हो कि अभी सारी दुनिया दुष्ट बनेगी। तुम जानते हो हम गुप्त विश्व पर विजय स्थापन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आत्मा बनना पड़े, माना देह भान छोड़ना पड़े, इसके लिए बाप को याद करना है। ये बात तुम किसी को भी सुनावेंगे तो सुनकर के खुश हो जावेंगे, समझेंगे इनको यही नॉलेज मिलती है स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, और तो कोई नॉलेज दे नहीं सकता, ऐसे कोई कह भी नहीं सकता कि हम सब ब्रदर्स हैं। जरूर इनका एक बाप आया हुआ है, एक बाप है तो सभी ब्रदर्स हैं। बाकी दुनिया में तो कह देते हैं सभी फादर्स हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम सभी ब्रदर्स का बाप एक है। उनसे अभी हमको वर्षा मिलना है, उनकी शिव जयंती भी मनाई जाती है, और इनका नाम ही है शिव। शिव का जन्म गाया जाता है सिर्फ रुद्रज्ञ नहीं है, ये रुद्र जो है वो नाम तो बहुतों के रख दिए, मैं तो अपना नाम शिव ही बताता हूँ, बल शास्त्रों में रुद्रज्ञ नाम रख दिया है, परंतु मेरा असली नाम एक ही शिव है। फिर शुद्ध रुद्र नाम क्यों रख दिया है? जब मेरा असली नाम एक ही है तो बाकी नाम नकली हुए क्या? नहीं, बिंदी का नाम है शिव, ओरिजिनल में मैं बिंदी हूँ, और जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तो अलग अलग नाम पड़ता हूँ। जैसा जैसा काम करता हूँ वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। कोई शरीर में प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करता हूँ तो रुद्र कहा जाता है। रुद्र के बच्चे जरूर रुद्र ही होंगे। कहते हैं रुद्रों ने मिलकर के प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सो तो जरूर करेंगे। शास्त्रों में सब यहाँ की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सार में बताता हूँ। अभी ये रुद्र यज्ञ रचा गया है, प्रजापिता के द्वारा ही रचा गया है। जो भी रुद्र यज्ञ में रुद्र बनेंगे वो बाप के ही बच्चे कहे जाएंगे। आज में स्थापना हुई थी और जब अंत होगा तो रुद्रगणों के द्वारा विनाश होगा। अभी स्थापना का काम चल रहा है, स्थापना पूरी होगी, राजधानी तैयार होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। रुद्रगण कहे जाते हैं। गण का अर्थ ही होता है समूह, जिनकी यादगार में रुद्राक्ष की माला बनती है। माला का अर्थ ही है संगठन, ऐसा संगठन जो एक के स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ है और एक के ही ज्ञान के सूत्र में पिरोया हुआ है। वो मेरे जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बच्चे, उनके राज्य की मैं स्थापना करने आया हूँ। रुद्राक्ष की माला 108 की माला है। ऐसे तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा रुद्र है। 500 करोड़ रुद्र माला की मणके हैं, क्योंकि जब तामसी बनते हैं तो सारा विनाश में सहयोगी बनते हैं। आत्मा स्थापना का कार्य भी करती है, आत्मा विनाश का काम भी करती है, और आत्मा दिव्य गुणों की पालना का भी काम करती है। उस हिसाब से कहा गया कि 500 करोड़ रुद्र हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, लेकिन मंदिर शिव का बनाया जाता है। रुद्र का मंदिर व रुद्र की जयंती नहीं कहेंगे, रुद्र का जन्म नहीं मनाया जाता, शिव का जन्म मनाया जाता है। कारण क्या है? शिव आते हैं संसार में प्रत्यक्ष होते हैं तो नई दुनिया की स्थापना भी होती है। नई दुनिया की स्थापना होती है तो उसकी पालना भी होती है, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। जिनकी स्थापना होती है, जिनकी राजधानी स्थापन होती है और जिनकी सुख की दुनिया की पालना होती है, वही फिर जयंती मनाते हैं। और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो विनाश होता है। तो उन विनाशकारी की जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि दुनिया का विनाश होगा फिर तो मैं चला जाऊंगा, फिर जयंती काहे की। शिव जयंती कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में देखो कितने भी नाम रख देते हैं, परंतु वास्तव में मेरा नाम एक शिव ही है। शिव अर्थात कल्याणकारी, जो बोलता हूं कल्याणकारी ही बोलता हूं, जो देखता हूं कल्याणकारी ही देखता हूं, जो वाइब्रेशन छोड़ता हूं कल्याणकारी वाइब्रेशन छोड़ता हूं, हर हालत में मैं कल्याणकारी हूं। मेरे द्वारा कल्याण का कार्य हो नहीं सकता, इसलिए मेरा नाम शिव है। तुम तो आत्माएं हो, आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, चक्र में आती है तो माया की चक्री में भी आती है। तो मनुष्य आत्माएं सदा काल कल्याणकारी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारा नाम शालिग्राम रख दिया है, क्योंकि तुम भी शिव के समान निराकारी स्टेज को प्राप्त होते हो, लेकिन शिव में बंधन नहीं दिखाया जाता, वो सदा शिव है। और शालिग्राम में बंधन दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि आत्माएं बंधन में आती हैं। शिव परमात्मा बल शरीर में प्रवेश करता है लेकिन बंधन में नहीं आता है। तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा दोनों में फर्क क्या है? मैं अभोक्ता हूं और तुम भोक्ता हो। मैं स्वार्थी नहीं हूं और तुम स्वार्थी हो। चाहे देवात्माएं हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो चाहे दैत्य आत्माएं हो, सब स्वार्थी हैं, क्योंकि सबको अपना अपना रथ है, मेरे को अपना कोई रथ नहीं है। इसलिए मेरा नाम शिव है, मैं हर हालत में परमार्थी हूं। अपना कल्याण की मुझे चिंता नहीं है, सन्यासी लोग फिर कह देते हैं कि परमात्मा सोहम आत्मा, तो देखो उनके कहने में और मेरे कहने में कितना अंतर है। बाप तो कहते हैं हम तुम सब आत्माओं का बाप, चाहे जो भी आत्माएं हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी देश विशेष में पाठ बजाने वाली हो, मैं सबका बाप हूं। इसलिए कह देते हैं परम पिता, फिर कहते हैं परमात्मा। परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते? परम पिता शब्द पहले क्यों लगाते हैं? जैसे कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहते, तो कारण क्या है? शिव बाप का नाम है और शंकर बड़े बच्चे का नाम है, जो देवताओं में भी बड़ा है, महादेव कहा जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। परमपिता अर्थात जो भी पिताएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं और चाहे प्रजापिता है, उन सब का बाप है। उससे बड़ा बाप कोई होता नहीं। मैं प्रजापिता का भी बाप हूं। प्रजापिता जिसे दूसरे धर्मों में आदम एडम कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, जो बापों का भी बाप कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि पर, मैं उस प्रजापिता का भी बाप हूं। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता। फिर बाद में शब्द जुड़ता है परमात्मा, मना मैं शिव ज्योति बिंदु परम पिता जब इस सृष्टि पर आकर के परम पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ, तो आत्माओं में जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी आत्मा है उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, जिसका मैं बाप हूँ। तो परम पिता मन शिव और परमात्मा माने जिसमें वो प्रवेश करता है, आत्माओं में परम पाठधारी मन हीरो पाठधारी मन परम पिता परमात्मा। तो जैसे आत्मा तो इनका बाप भी वही होगा, सभी आत्मा है। शरीर को होते आत्मा का मर्तबा मिलता है, शरीर न हो तो आत्मा का कोई मर्तबा नहीं। अभी ऊंच से ऊंच मैं हूं, तो मैं इस सृष्टि पर ऊंचते ऊंच हूं या परमधाम में ऊंचते ऊंच गाया जाऊंगा? ऊंचते ऊंच और नीचे से नीचे का सवाल इस सृष्टि का है, ब्रह्मलोक का नहीं है। इस सृष्टि पर ही ऊंचे और नीचे गाया जाता है, तो ऊंचते ऊंच कहेंगे ब्रह्मा को, उससे ऊंच कहेंगे विष्णु को और उससे भी ऊंच कहेंगे महादेव को और इन तीन देवताओं से ऊंचा कहेंगे शिव को। वो है प्रजापिता और मैं हूं प्रजापिता का भी पिता। इन बातों को दुनिया तो कोई जानती नहीं है, तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, इसलिए कहते हैं एक एक मुरली को छह छह बार पढ़े या सुने तब बात बुद्धि में बैठेगी। कोई तुमको मुझने के लिए कहेंगे शिव बाबा आया हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो ये नया जन्म ठहरा। तो कहो हाँ, हमारा जन्म भी नया है और संबत भी हमारा नया होता है, क्योंकि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, तुम चोटी के ब्राह्मण हो, चोटी में ना एड़ी से लेकर के चोटी तक, एड़ी में ना पांव का पिछला हिस्सा और चोटी माने शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा। तो तुम चोटी के ब्राह्मण हो, जैसे ब्राह्मणों की नौ कुड़ियां गाई जाती हैं, उन नौ कुड़ियों में तुम चोटी के ब्राह्मण हो। जब यज्ञ की आदि हुई तो तुम बच्चे चोटी में थे, बाद में वो दूसरे दूसरे परवर्ती ब्राह्मण आते थे, अभी तुम फिर से चोटी में पहुंचने वाले हो। तो जब तुम नया वर्ष शुरू करेंगे, संबत एक एक से शुरू करेंगे, तो चोटी से शुरू करना पड़ेगा। बीच से शुरू क्यों करेंगे? तो तुमको समझाना है वहां सतयुग में हम सरसों प्रधान होंगे, अभी तो इस दुनिया में साफ पतितमो प्रधान है, कोई सतो प्रधान नहीं है। अगर कहें तो यही कह सकते हैं कि सिवाय एक शिव बाबा के और कोई सतो प्रधान नहीं। एक सदगुरु सच्चा और बाकी सब झूठे। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सीढ़ी का राज भी कितना अच्छी रीति समझाया है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, ये है सीढ़ी का राज। जिनकी जिनकी चढ़ती कला होती जावेगी, वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अभी तुम दूसरों का भला करते हो तो तुम गोरे बनते जाते हो। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहां तो देखो आर्टिफिशियल कितनी फैशन है। तुम जानते हो हम तो नेचुरल देवी देवता थे, ये देवताओं का राज्य हमने अनेक बार लिया है, हमें ही राज्य लेते हैं और हमें ही राज्य घुमाते हैं। उसमें भी चार युगों में तीन युग में हम सुख में रहते हैं, तीन हिस्सा हमारा सुख का होता है और चौथाई दुख का होता है। और तुम चोटी के ब्राह्मणों के अलावा और जो होते हैं उन सब का आधा सुख होता है और आधा दुख होता है। तो तुम जास्ती सुख भोगते हो और जो ब्राह्मण होते हैं वो तुम्हारे जितना सुख नहीं भोगते, ये अंतर है चोटी के ब्राह्मणों में। अगर इक्वल सुख और इक्वल दुख हो तो ईश्वरीय ज्ञान लेने का क्या फायदा? हम ईश्वर से ज्ञान लेते हैं तो कुछ तो फायदे में रहना चाहिए, जरूर तुम्हारा सुख जास्ती होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे बनते हो और वो प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे नहीं बनते। तुम बाप से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो और वो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते। पिछाड़ी में तुमको थोड़ा सा दुख होता है। विवेक भी कहता है कि सुख और दुख अगर बराबर महसूस हो तो तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुमको दुख होता है अंतिम में, अंतिम जन्मों में, तो तुमको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, भले वो लोग नया वर्ष मना रहे हैं, परंतु हम तो इन सबसे न्यारे हैं। हम तो कोई उत्सव नहीं मनाते, हम कोई त्योहार भी नहीं मनाते। वो जड़ दीपकों की दिवाली जलाते हैं, हम तो आत्मा के दीपक जलाते हैं। हम उनके जड़ दीपकों की दिवाली देखने भी नहीं जाएंगे। तुमको तो नशा होना चाहिए कि हम चैतन्य दीपकों की दिवाली मनाए रहे हैं। हमारे चैतन्य दीपक जगेंगे तो सारी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। जैसे नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है, ऐसे तुम्हारे लिए 2500 वर्ष तक इस धरती पर दिन ही दिन होगा। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। और अभी तो तुम इस दुनिया में संगम युग को सबसे ऊंचा रखते हो, क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग। सचयुग त्रेता में तो कल्याण होता ही है, परंतु लॉटरी तुमको अभी मिलती है। इक्कीस जन्मों की लॉटरी मिलती है, और कोई कंगाल को अगर लॉटरी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तुमको अभी लॉटरी मिल रही है। जब लॉटरी तुमको मिलती है तो तुमको अतीन्द्रिय सुख बांधता है। उस समय दुनिया के लिए दुख की बात होगी और तुम्हारे लिए सुख की बात होगी। ये बात मुसलमानों की कुरान में भी लिखी हुई है कि जब कयामत होगी तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े आराम में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अतीन्द्रिय सुख तुमको मिलेगा, उन ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हो मुखवंशावली। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा तवज्जा देते हो, और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं, भारत को धोखा दे जाते हैं, दूसरे धर्मों की शक्ति बढ़ाते हैं और भारत की शक्ति छीन कर देते हैं। तो वो बाप के बच्चे कैसे हुए? तुम हो डायरेक्ट बाप के बच्चे, तुम हो सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट, इसलिए तुमको सुख जास्ती मिलता है। गोप गोपियां भी तुम हो, क्योंकि तुम गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हो। उन ब्राह्मणों को गुप्त थोड़े ही कहेंगे, ईश्वरीय संतान भी तुम कहलाते हो क्योंकि तुम ईश्वर से जन्म लेते हो। वो ब्राह्मण तो ईश्वर से जन्म कहाँ लेते हैं, ईश्वर तो आकर के ब्रह्मा द्वारा जन्म देता है। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। जब तुम्हारा ब्रह्मा ही सूक्ष्म वतन में है तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम भी भागो सूक्ष्म वतन में। अरे ब्राह्मणों का गायन तो इस सृष्टि का है या सूक्ष्म वतन का है? ब्राह्मण तो इस दुनिया में पूजे जाते हैं, तो ये तुम्हारा गायन है, तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ईश्वरीय संतान तुम कहलाते हो। वो ईश्वर से जन्म ही नहीं लेते, उनको ज्ञान किससे मिलता है? उन ब्राह्मणों को ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान का दिव्य जन्म किससे मिलता है? भगवान से मिलता है या दीदी दादी दादाओं से मिलता है? किससे मिलता है? उनको, उन ब्राह्मणों को, दीदी दादी दादाओं से मिलता है। ब्रह्मा से जन्म कहाँ मिलता है? ब्रह्मा है ही नहीं तो जन्म कहाँ से मिलेगा? और तुम्हारा तो ब्रह्मा है, तुम तो जानते हो कि मुरली में बाप ने बोला हुआ है कि ये ब्रह्मा चला जाएगा तो जिस कण में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा कोई एक का नाम होता नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। लेकिन तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ ही है बाप भी है तो माँ भी है, वो हमारा अर्ध नारीश्वर का स्वरूप है, आधा नारी और आधा पुरुष, कंबाइंड बाप दादा नाम है। वो बाप राम बाप भी है, उसमें शिव बाप तो है ही, और फिर वो हमारा दादा भी है।